हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश रूपी ककांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरु भयस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक नंबर 6। कृपया मेरे साथ साथ इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं, न चैतत्सित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः पीवस्थितापर्मुखे धार्तराष्ट्राः। अन्तिम न चैतत्विक्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिता प्रामुखे धार्तराष्ट्राः। शब्दों का अर्थ देखिए, न मन नहीं च भी एतत् यह विद्मः हम जानते हैं, यानी कि पहले तो बता दिया कि श्रेयो भोक्तुम दक्षम अपी हलो कि मुझे खबर है कि मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं भीख मांगकर गुजारा करूं, लेकिन यहाँ पर बोलना कि न चाहिए तद्विद महा हम नहीं जानते कतर अन्नो गिरियो, कतर अन्न मना जो हमारे लिए गरियो मना श्रेष्ठ है, यानी कि अभी मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या दो चीजों में से कौन सी चीज श्रेष्ठ है और दो कौन सी चीजें हैं। यद्वा यानी अथवा जयेम हम जीत जाए, यदि वा या फिर यदि वाना या हमको जेयो, यानी कि हमें मुझे ये समझ में नहीं आया मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्या वो मुझे जीत जाए वो बेहतर है या मैं उनको जीतूं को वो बेहतर है। याने व हत्वा, याने व मतलब जिनको निश्चय ही हत्वा मार कर ना कभी नहीं जीजी विषामा हम जीना चाहेंगे, यानी कि ये जो सामने खड़े हुए ना इनको अगर मार डालेंगे उनको मार कर हम जीना नहीं चाहेंगे। और क्या ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कि अब मेरे सामने मुझे तो भीष्म और द्रोण का तो चलो ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, उन्होंने सबसे हेवी तर्क दिया था कि भीष्म और द्रोण क्योंकि मेरे गुरुजन हैं महापुरुष हैं उनको नहीं मारना चाह रहा, लेकिन आज तो यहाँ तक कह रहा है ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कि जो मेरे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े ना उनको भी अगर मैं मार डालूंगा तो फिर मुझे जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब कल इस श्लोक में श्लोक नंबर 5 में अर्जुन ने भगवान को कहा कि द्रोण हत्वा न महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपी हलोके हत्वा त कामान तो गुरु नहीं है वह बुंजीय भोगान रुद्र प्रदीक्षा कि अगर मैं गुरुओं को मार डालूंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि सारा जो भी मैं खा रहा हूँ वो सब उनके खून से सना हुआ है। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे ये ख्याल आया कि हो सकता है युद्ध में मुझे भीष्म या द्रोण को मारना ना पड़े, क्योंकि यदि वो दोनों युद्ध में उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों मारूंगा, मैं तो सिर्फ अपने शत्रुओं को यानी दुर्योधन और दुशासन को मार लूंगा, जिन जिनके साथ हमने प्रतिज्ञा ली है उनको मार डालेंगे और जब वो मर जाएंगे तो डेफिनेटली राजा में मिल जाएगा। लेकिन यदि ऐसा भी होता है, क्योंकि भीष्म और द्रोण तो युद्ध अर्जुन वालों से युद्ध नहीं करना चाहते थे ना, लेकिन फिर भी क्योंकि दुर्योधन बार बार उन्हें प्रोत्साहन देता था कि आप उनका साथ दे रहे हो आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, बार बार उनको तंग करता था, इसलिए उन मजबूरन वो लोग है ना इनसे युद्ध कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने सोचा चलो ठीक है, अगर वो दोनों युद्ध नहीं करते हैं और मुझे उन दोनों को मारना नहीं पड़ रहा है, खाली मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पड़ रहा है, तो भी क्या कह रहे हैं अर्जुन, याने व हत्वा न जिजी विषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कि ये जो सामने मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ाई करने के लिए खड़े ना, खाली यदि मैं उनको भी मार डालूंगा ना तो भी मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी मैं जीना नहीं चाहता, जिजी विषामः फिर भी मैं जीना नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं चाहेंगे, यानी कि अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है ना कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र उसके साथ इतना दुर्व्यवहार कर चुके हैं और फिर उनको मारकर क्यों नहीं जीना चाह रहा है अर्जुन, ऐसा क्यों उसके मन में विचार आ रहा है। उसका मन देखो यहाँ पर उसने दुर्योधन और दुशासन का नाम नहीं लिखा, धार्तराष्ट्र लिखा, यानी कि वो दोनों पुत्र किसके हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और धृतराष्ट्र कौन है, मेरे पिता का भाई जो कि मेरे पिता तुल्य है, यानी कि जितना दुख मैं अगर अपने पिता को कभी कोई दुख दूं तो मुझे कितना दुख लगेगा मेरी वजह से मेरा पिता अगर दुखी हो, तो उतना ही दुख मुझे तब लगेगा जब मेरी वजह से धृतराष्ट्र जो है, क्योंकि मेरे ताजश्री हैं, वो यदि दुखी होंगे अब इन दोनों इनके 100 पुत्रों को मैं मार डालूं और उनके सामने उनको मैं फेस कैसे करूंगा। ऐसी बातें मुझे उनको फेस करना पड़ेगा, फिर मैं धृतराष्ट्र को और गांधारी को फेस ही नहीं कर पाऊंगा। बार बार मुझे ऐसा लगेगा कि वो मुझे जताएंगे, उनके बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनके पुत्रों का खूनी हूँ। तो मैं वो भी जीवन में नहीं जान, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न चय विद्मह कतर अन्नो गरियो यदवा जय में यदि वानो जयो, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जीतूं या इनसे जीतूं, यानी कि समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि इनको जब जीतूंगा तो इनको मारना पड़ेगा, तो मेरी एक तरह से हार होगी क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाऊंगा अपने पिताश्री यानी अपने राशि धृतराष्ट्र को और गांधारी को। और अगर मैं इनसे इनको जीत जाता हूँ, इनसे जीत जाता हूँ और राज हासिल कर लेता हूँ तो भी मेरे लिए हानि हो रही है, और अगर ये मुझसे जीत जाते तो वैसे ही मेरे लिए हानि है। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी श्रेष्ठ अपने लिए समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नजर ही नहीं आ रहा है। तो अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या इनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी कि पहले तो अर्जुन ज्यादा दुखी हो रहा था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर, लेकिन आज उसने अंतिम यहाँ पर अपनी बात कही कि मैं उनको भी मारना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद भी मुझे ना जो फेस करना पड़ेगा वो मेरे लिए बहुत दुखदाई होगा, इसलिए मैं मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि उनको जीतूं तो मेरे लिए बेहतर है या उनसे जीतूं तो बेहतर है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यानी कि भगवान यहाँ पर श्री रूपा जी बोल रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो युद्ध करके अनावश्यक रक्तपात, यानी कि अब देखो आवश्यकता किसकी मारने की है, सिर्फ कुछ लोग जिन्होंने अपराध किया उनको, लेकिन बाकी सब अपराधी नहीं है उनको मारना पड़ेगा, तो उनका रक्तपात करने के लिए उसको युद्ध करना चाहिए। हालांकि क्षत्रिय होने के बाद श्री प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, उसको लिए युद्ध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि क्षत्रिय को युद्ध करना होता है अधर्म को हराने के लिए, और क्षत्रिय के लिए ये शोभा नहीं देता है कि वो भीख मांग कर गुजारा करे, क्योंकि भीख मांगने के लिए ब्राह्मण या सन्यासी उनको भीख मांग कर गुजारा करना होता है, लेकिन क्षत्रिय तो युद्ध करता है, राज करता है, उसका काम होता है शासन करना, तो वो भीख मांगना उसको सूट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध से अनावश्यक रक्तपात से ज्यादा बेहतर क्या है मेरे लिए कि भीख मांग कर भले गुजारा करूं लेकिन लड़ाई ना करूं। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है, क्योंकि क्षत्रिय किसी के यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो बोला कि फिर तो एक ही साधन रह जाएगा, भीख मांगना। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर था, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। यानी वो बोल रहा है कि अगर मैं लड़ाई में जीत भी जाऊं, यानी कि भीख नहीं मांगनी पड़े, जीत जाऊंगा, क्यों? क्योंकि धर्म उसके साथ में था, कृष्ण उसके साथ में, न्याय उसके साथ में था, तो पॉसिबल था कि वो लड़ाई में जीत जाए, तो भी वो कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा, फिर भी मुश्किल होगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी, यानी अब वो दूसरी प्रकार की हार है एक तरह से, क्योंकि बाद में जो उसको फेस करना पड़ेगा उसमें उसको दुख भोगना पड़ेगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के यह विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात श्री भोपाल जी बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो ना केवल भगवान का भक्त था, क्योंकि भक्त जो है उनके हृदय में ये अहिंसा का भाव नहीं होता है, अपितु वो बहुत प्रबुद्ध भी था और वो फ्यूचर की सोच रहा है कि देखो ऐसा करने के बाद ये परिणाम निकलेगा तो मैं इनको मारना नहीं चाहता, और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। क्योंकि जब गुस्सा होता है, जब क्रोध होता है, तो हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि युद्ध भूमि है और उसके बावजूद भी वो दुष्परिणाम सोच रहा है और ये सोच रहा है कि यदि लड़ाई होगी उसके बाद मैं इनको मार डालूंगा तो धृतराष्ट्र के मन पे क्या बीतेगी, वो कितने दुखी होंगे, तो मैं उनको दुखी उनके दुख का कारण भी नहीं बनना चाहता। तो ये सब विचारधारा के हिसाब से श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो उसको अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। राज परिवार में जन्म लेने पर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण, यानी कि वो राज परिवार में था और फिर भी वो क्या सोच रहा था कि मैं भिक्षा मांगकर गुजार करूं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यहाँ पर श्री गोपाल जी कितना अच्छा लिख रहे हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की उपदेशों पर उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वे सचमुच पुण्य आत्मा था। अब यहाँ पर उसके गुरु कैसे हुए, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन याद कराना चाह रहे हैं कि माधव याद करो, पिछले जन्म में आप जब श्री राम के रूप में आए थे तो आप क्षत्रिय थे और आपके सामने भी कुछ इसी तरह का प्रस्ताव, क्योंकि कल आपको राज मिलने वाला था और आपकी माता ने एक षड्यंत्र लगाया, एक कुब्जी के जो मंथरा है उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और आपको राज न देकर सन्यास दे दिया, तो आपने क्या एक्सेप्ट किया, सन्यास एक्सेप्ट किया, राज्य को त्याग दिया, सोचा भी नहीं, राज्य की तरफ देखा भी नहीं, इवन यहाँ तक कह दिया केक कई को कि इतनी छोटी सी बात कहने के लिए आप इतना अपने आप को कष्ट दे रही थी। यदि किसी मंत्री के साथ या किसी सेवक के साथ भी कहला के भेज दिया तो मैं फौरन चला जाता, यहाँ से राज छोड़ देता और वनवास में चला जाता। तो जब आप त्याग को इतना महत्व देते हो तो फिर मुझे भी ऐसा ही कहो ना कि त्याग करना जो है ना ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मैं ये त्याग करना चाहता। लेकिन इसका भगवान श्री कृष्ण बहुत उत्तर अच्छा देंगे 18वें अध्याय में कि त्याग का क्या मकसद होता है, त्याग का कारण क्या होता है। लेकिन यहाँ पर तो अर्जुन एक बहुत ही पुण्य आत्मा का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह वह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था, क्योंकि वो मुक्ति के योग्य था, उसको अब ये क्षत्रिय धर्म वगैरह पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि संसार को दिखाने के लिए, क्योंकि ये हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या होता है कि मैं कैसे भगवान को खुश करूं, और इस समय भगवान की प्रसन्नता किसमें थी कि अर्जुन युद्ध करे और अधर्म का नाश करे, तो इसी से उसको संतुष्टि मिलने वाली थी। क्योंकि जिस तरह हम भगवान को जब खुश करते हैं तभी हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ विश्व गोपाल जी बोलते हैं इस तरह निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्वथा योग्य था अर्जुन मुक्ति के लिए, जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। यहाँ विश्व गोपाल जी ज्ञान हासिल करने की विधि बता रहे हैं कि आप भले कितना ही ज्ञान हासिल कर लो, यदि आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है, यदि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ज्ञान नहीं हासिल कर सकते सही तरह से, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है ना। ज्ञान में क्या बताया जाएगा कि ये चीजें आपको बुरी, ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, और बाद में आप अपनी इंद्रियों को संयमित ना करके वही घिनौने कार्य कर रहे हो, तो फिर आप सही तरह से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकोगे। श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान के बिना ज्ञान तथा भक्ति, यानी भक्ति के लिए खाली भक्ति की जरूरत नहीं होती है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी होता है। क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना 18.17 में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते कि आपके साथ आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए उसके साथ साथ भक्ति भक्ति के लेकिन भक्ति से ज्ञान खुद ब खुद आ जाता है वो एक अलग बात है लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी अनिवार्य है यानी कि अपने जो गुरुजन हैं उनके उनसे शिक्षा लेना इसी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दीदी प्रणिपाते न परिप्रश्न न सुनवा अगर ज्ञान आदि इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता तो भगवान बोलते ही नहीं ना जाके प्रश्न करो बोलो बस प्रश्न नहीं करो बस आप खाली जप करो ऐसे ही बोलते लेकिन क्योंकि भक्ति और ज्ञान ये दोनों एक साथ होने चाहिए क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर भक्ति जो है वो वीक हो जाएगी फिर हम उसको सही तरह से नहीं पालन कर सकेंगे लेकिन ज्ञान होगा तो फिर हम अच्छे तरीके से भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकेंगे तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है कब जब हम इंद्रियों को संयमित नहीं करते और जब बिना ज्ञान के भक्ति और मुक्ति नहीं होती है यानी कि भक्ति और मुक्ति प्राप्त कब होती है जब ज्ञान ज्ञान क्या भक्ति के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होगी कि किस तरह से हम भगवान की है ना सेवा करें किस तरह से भगवान को भोग लगाएं कैसे हम भगवान की आरती करें किस तरह से भगवान हमारे सर्वस्व हैं कैसे शास्त्रों का अध्ययन करें शास्त्रों को पढ़ना ये सब ज्ञान तो है अर्जुन अपने भौतिक गुण के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में भी दक्ष थे यानी श्री प्रभुपाद जी बता रहे एक तो उसके भौतिक गुण इतने ज्यादा थे कि वो यशस्वी था धनंजय था और गुड़ाकेश था यहाँ पर एक चीज बहुत ही सुंदर समझने को मिलती है कि अर्जुन को युद्ध भूमि में आने से पहले भी पता था कि युधिष्ठिर और ना हमको दुर्योधन दुशासन इत्यादि जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनसे तो लड़ना पड़ेगा ये तो पता था ना उसको लेकिन आज जब वो इनके सामने खड़ा है और उनको जैसे ही उसने देखा खाली देखा है ना किस किस को देखा भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन को 1.25 भगवान ने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यताम् समवेतान् कुरुनीति भीष्म द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो खाली देखा और देखने से ही क्या हो गया भगवान ने उसको कहा तुम देखना चाहते थे ना कि दुर्योधन का साथ कौन दे रहा है तुम इतना दूर थे तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे हालांकि तुमने इनको पहले भी हजार दफा देखा है लेकिन फिर भी देख लो देखना है तो देख लो अंतिम टाइम उनको तो जैसे ही उनको देखा और अर्जुन की विचारधारा बदल गई कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है हाथ पैर सूख गए और उनका गांडीव धनुष गिर गया बोला ना योत्स्यमिति गोविंद मैं नई लड़ाई करूंगा अब तो मुझे ये समझ में यहाँ तक तो ये कह दिया कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जीतना या इनसे जीतना ज्यादा बेहतर है अब ये चीज उसको पहले नहीं खबर थी क्या कि मुझे इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी लेकिन फिर जैसे ही देखा क्योंकि जब हम किसी को भी देखते हैं उस टाइम पर हमारी विचारधारा बदलती है पहले जब युद्ध भूमि में नहीं खड़ा था तब उनको देखकर उसकी विचारधारा अलग थी लेकिन आज जब युद्ध भूमि में इनको देखा है तो विचारधारा अलग होगी तो इसका मतलब है जब हमारी इंद्रियां कोई भी अपने विषयों से टकराती है जैसे इंद्रियां कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं आंख कान नाक त्वचा रस ना और उसके विषय कौन से हैं रूप रस स्वाद गंध और स्पर्श जब उसके साथ टच हो जाता है उस वो दृश्य टच हो जाता है तब हमारे मन को फौरन से परिवर्तित कर देती है यानी कि पहले भी हमें वो चीज पता होती है लेकिन जैसे ही इंद्रियों के साथ मन टच हो जाता है तो हमारी विचारधारा बदल जाती है तो इस तरह से इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने हमें बताया है कि जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है यानी कि सबसे पहले हमें किसको संयमित करना है इंद्रियों को ऐसी चीज दिखानी ही नहीं है जिससे वो विचलित होकर मन को विचलित कर सके इंद्रियों को ऐसी चीजें दिखानी है जिससे वो ऊपर उन्नति करें ना कि नीचे गिरे तो इंद्रियों को हमेशा संयमित करने के लिए भगवान आंखों को भगवान का दर्शन कराना चाहिए कर्णों को भगवान के विषय में कथा सुनानी चाहिए और मुख से भगवान के नाम का श्रवण कराना चाहिए और इसी से हमारी इंद्रियां संयमित होंगी तो फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा